શ્રીમદ રાજચંદ્ર ગ્રંથ ભાવનાબોધ 12 ભાવના ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન. મૂળ પ્રવચન 20 મિનિટ છે તથા હમિંગ છે.
और चिदानंद स्वरूप आत्मा में डूबने वाले मुनिवर, ये जो छठवें सातवें गुण स्थान में आत्मा के अमृत कुंड में मग्न हुआ झूलते हैं, उनके अवतार सफल है. मनुष्य पड़ा हुआ वो सफल है. ये मुनि भगवंत की भक्ति की है. हरेक समय दृष्टि को हमेशा ये भावना रहती है कि ऐसी मुनि दशा मुझे कब प्राप्त हो, ऐसी भावना रहती है. अपनी पुरुषार्थ की कमजोरी से ग्रस्त दशा में या असंयत दशा में रहते हैं, फिर भी उनकी भावना में तो ऐसा होता है कि मैं ऐसा मुनि कब हूँ. सौराष्ट्र में तो ये दिगंबर संप्रदाय इतना प्रसिद्ध नहीं था, फिर भी 90-100 साल पहले श्रीमद् राजचंद्र जी ने वो भावना अपूर्व अवसर के कार्य काव्य में व्यक्त की है. नग्न भाव मुंड भाव सह स्नानता अदंत धोवन आदि परम प्रसिद्ध, जो 28 मूल गुण परम प्रसिद्ध है, ऐसा कहा. वहाँ तो समाज में वो बात नहीं चलती थी. समाज में तो सब श्वेतांबर वगैरह का चलता है. परम प्रसिद्ध कहा, 28 मूल गुण तो जिनागम के विषय बिल्कुल परम प्रसिद्ध है. मेरी ऐसी भावना है उस वक्त में. अपने लिए वो भावना भाई थी. जब अपने लिए वो भाव है तो फिर उपदेश में या कहने के लिए कोई दूसरी बात हो, ये बात कैसे संभव हो, शंका करते थे. वो श्वेतांबर को मानते थे या दिगंबर को मानते थे? दिगंबर मुनि की तो भावना है अपनी, वो फिर श्वेतांबर को ठीक कहें, अच्छा कहें, बराबर कहें, यथार्थ कहें, वो बात कहाँ से करें. इधर गुरुदेव भी अपनी भावना को कैसे शब्दों में लेते हैं. ओ मैंने महिमा की है, कैसे हैं, कितना पुरुषार्थ है, कितना प्रचुर स्वसंवेदन है, कितना आनंद है. छठे गुण स्थान में भी पंच महाव्रत 28 मूल गुण का विकल्प हो, फिर भी परिणति में तो ज्ञान चेतना का करंट चलता है. ज्ञान चेतना कहीं चली नहीं जाती. शुद्धोपयोग के काल में ज्ञान चेतना के विषय में कोई विवाद नहीं हो सकता, क्योंकि जो उपयोग शुद्धात्मा में मग्न है, लीन है, वहाँ तो कोई विवाद की गुंजाइश नहीं है. लेकिन सम्यक दृष्टि मुनि का उपयोग बाहर चलता है, मन वचन काया और दूसरे निमित्त के अनुसार, तो लोग को शंका होती है कि इस वक्त जो है वो ज्ञान अपना आत्मा को आराधन नहीं करता है. ज्ञान ने संग छोड़ दिया परमात्मा का, इसलिए ज्ञान की आराधना वहाँ नहीं है. श्रद्धा की आराधना है, चारित्र की आराधना है, लेकिन ज्ञान की आराधना वहाँ नहीं है. ऐसी बात नहीं है. ज्ञान चेतना चली नहीं जाती. चतुर्थ गुण स्थान से बारहवां गुण स्थान तक ज्ञान चेतना बताइए, फिर केवल ज्ञान है, श्रुत ज्ञान का ही अवयव है ज्ञान चेतना, सम्यक श्रुत ज्ञान, वो ज्ञान चेतना चालू ही चालू रहती है। माँ तो मति श्रुत दो ही ज्ञान है, केवल ज्ञान नहीं हुए उसके पहले, ज्ञान चेतना वहां होती है, वो ज्ञान चेतना का और सुख का करंट चालू है, वो करंट इतना चालू है कि वो शरीर और दूसरे प्रतिकूल संयोग उपद्रव जो उपसर्ग परिसर रूप में हो उसको वो गिनते नहीं, वहां वो कोई प्रवृत्ति चेष्टा नहीं करते कि ये प्रतिकूलता को दूर करे और अपना देह का संरक्षण करे, ऐसा नहीं होता। इसका कारण क्या, उपयोग तो बाहर गया, उपयोग तो चलने में बैठने में सोने में खाने में लगता है, बातचीत करने में भी लगता है, फिर भी वो उपयोग की मर्यादा है कि वो कभी प्रतिकूलता को दूर करे निराश और अनुकूलता को ले आवे, ऐसा कोई प्रयत्न कोई चेष्टा निराश नहीं करे। क्यों नहीं करे कि ऐसा सुख का करंट चलता है, ऐसा सुख चलता है कि अगर जो वो दैहिक सुख की चेष्टा करे तो वो सुख चला जाए, इसलिए वो बाधक है, ऐसे परिणाम मुनिराज के लिए बाधक है, दुख रूप होते हैं। ये तर्क करते हैं कि थोड़ा सा वस्त्र रख लिया तो क्या हुआ, उसमें क्या आपत्ति है, तो कहते हैं कि वही वस्त्र ग्रहण करने का परिणाम वही आपत्ति है, वही दुख भाव है। सुख के लिए संसारी लोग वस्त्रादि ग्रहण करते हैं, अनुकूलता के साधन जुटाते हैं, लेकिन मुनिराज को तो यही दुख का परिणाम, दुख रूप परिणाम है, ये अपने अंतर के सुख का घातक हो जाता है। इसलिए ऐसा प्रयत्न करना यही इनके लिए दुख है। ऐसा छठे गुण स्थान में भी सुख का करंट चलता है कि जिस सुख के वशात वो कोई अनुकूलता प्रतिकूलता के माथा पोड़े में सिर पोड़े में जाते हैं, जा ही नहीं सकते, उतना वहां चलता है। सातवें में तो फिर कहने का सवाल नहीं, वो तो शुद्ध उपयोग में है, निर्विकल्प ध्यान में है, आठवें गुण स्थान में तो कोई प्रवृत्ति वैसे ही बुद्धिपूर्वक होती नहीं। ऐसी दशा मेरी कब होवे, ये भावना का विषय रहता है। ओ कह करके ओ में वो बात आती है, ओ कहते ही ओ में वो बात है कि मुझे ऐसा कैसा कब हो, ऐसी बात है। जी द्रवलिंगी ने छठा सातवा गुण स्थान जेटलो तो नहीं, सम्यक दृष्टि द्रवलिंगी हो के पंचम गुण स्थान वृत्ति द्रवलिंगी हो। मिथ्या दृष्टि द्रवलिंगी ने तो कर्म चेतना ने कर्म फल चेतना है, तो ज्ञान चेतना है, पर सम्यक दृष्टि पर मुनि दशा धारण करे, पांचवा गुण स्थान वाला कोई मुनि दीक्षा अंगीकार करी लिए, गुण स्थान ऊपर न आवे तो ज्ञान चेतना है, पर इतनी उग्र परिणति नहीं जितली मुनि दशा में उग्र परिणति छठा गुण स्थान ने योग्य शुद्धि नहीं थी ने हो, केम के त्या कषाय त्रण नाश पामे छे, कषाय ना अभाव में सुख शांति नी दशा छे, कषाय ना सद्भाव में दुख की दशा, और कषाय के सद्भाव सद्भाव में दुख और अभाव में शांति और सुख, ये बात है। इसलिए कहते हैं कि अडोल दिगंबर वृत्ति को धारण करने वाले डोलते नहीं, डोलायमान नहीं होते, विचलित नहीं होते, अडोल मैंने अविचलित, ऐसे अविचलित स्थिति में वो रहते, विचलित नहीं होते, मन में वास करते हैं, बस्ती में निवास नहीं करते हैं, कोई बस्ती से प्रयोजन नहीं है, मुनिराज को बस्ती से कोई प्रयोजन नहीं है, कोई समाज का कोई काम नहीं करना है, समाज की कोई बात का ध्यान नहीं देते, ऐसे ऐसे विकल्प उनको नहीं आते। उपदेश विकल्प होए तो उपदेश चले बस, आत्मा का इससे ज्यादा आगे कोई सामाजिक प्रवृत्ति में मुनिराज पढ़ते हैं, इसलिए वो जंगल में बसते हैं। जंगल के बसने का यही कारण है, जंगल में भी निरव स्थान में जाते हैं, जहाँ आवाज न हो, एकांत स्थान में विचरते हैं। असंग दशा, बाह्य में असंग दशा, अंतरंग में भी असंग दशा, असंग तत्व को साधने वाले मुनिराज असंग दशा में विचरते हैं, वनवास में वस्ती में नहीं रहते, वस्ती में रहना उनको अनुकूल नहीं पड़ता। वो अपने से नीचे गुणवान अनुगुणी का संग नहीं करते, अवगुणी इनको संग करने आते हैं तो उपदेश का विकल्प उठे तो उपदेश कर दें, नहीं विकल्प उठे तो नहीं करें, मम रह जावे। और पात्र हुए तो उनकी मौन दशा से भी उनको उपदेश मिले, ऐसे इनकी मौन दशा भी इतनी आत्मा का गुण को प्रकाश करने वाली, प्रसिद्ध करने वाली है, आत्मा की शांति इनके दर्शन मात्र से ही मिलती है। तो उनके दर्शन से भी दर्शन करने वाले धन्य हो जाते हैं, तो ये तो चलते फिरते सिद्ध हैं। गुरुदेव क्या कहते थे, चलते फिरते सिद्ध हैं, सिद्ध दशा तो आगे जाके होंगी, लेकिन जैसे जैसे पिता की मुखाकृति के अनुसार पुत्र की मुखाकृति होती है, वैसे सिद्ध परमात्मा के अनुसार, गुजराती में उसको अनुसार कहते हैं, हिंदी में क्या कहते पता नहीं, जैसे मुखाकृति सिद्ध समान दिखते हैं, सिद्ध चलते फिरते नहीं होते, लेकिन मुनिराज चलते फिरते सिद्ध हैं। सिद्ध का दर्शन करना हो
चलते फिरते ऐसा है,
बहुत महिमा करते थे गुरुदेव अपने प्रवचन में, जहाँ भी मुनि दशा का स्मृति होती थी, उल्लेख आता था, तो बहुत भक्ति करते थे। मन में बसने वाले होते हैं और अपने चिदानंद स्वरूप आत्मा में डोलने वाले, मैंने मस्त रहने वाले, डोलने वाले मैंने मस्त रहने वाले, ऐसे मुनिवर जो छठे सातवें गुण स्थान में आत्मा के अमृत कुंड में, दोनों गुण स्थान में आत्मा के अमृत कुंड में मग्न हुआ डोलते हैं, क्षण में छठवें में आते, क्षण में सातवें में आते, अमृत कुंड में मग्न है। बहुत ठंडी हो, बहुत गर्मी हो, या कुछ भी परेशा हो, उपसर्ग हो, उसमें वो है ही नहीं, वो तो आत्मा के अमृत कुंड में मग्न है बस। सामान्य दशा, विशेष दशा, बाहर की कोई भी परिस्थिति हो, सामान्य विशेष, उसमें अमृत कुंड में मग्न रहते हैं, झूलते हैं। ऐसे उनके जो अवतार हैं वो सफल है, ऐसे मुनिराज का मनुष्य भाव में आना बहुत सफल है। वो केवल ज्ञान लेने के लिए तैयार हो गए हैं, केवल ज्ञान की तलेटी में बैठे हैं, चढ़ जाएंगे ऊपर, ऐसे तलेटी में से ऊपर जाते हैं ना, पर चढ़ जाएंगे ऊपर, कभी भी श्रेणी लगा देंगे तो अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान हो जाएगा। इसलिए उनके अवतार सफल है, मनुष्य भाव पाया और मुनि दशा तक की आराधना की, धन्य है उनके इस अवतार को, इस भाव को, कि वहां तक वो पहुंचे। उनके अवतार सफल हैं, ऐसे संत मुनिवर भी वैराग्य की बार भावना, ये बार भावना अनित्य भावना, आश्रण भावना, अनित्य भावना, एकत्व भावना, संसार भावना, धर्म भावना, लोक भावना, ऐसे बार भावना है, ये वैराग्य की जननी ऐसा कहा है, वैराग्य को उत्पन्न करने वाली है। यानी कहीं भी रस नहीं आवे, वैराग्य मैंने अपने परिपूर्ण आत्मा में इतना रस है कि इस रस के वसात कहीं भी और जगह उनको रस आता नहीं है। पद्म प्रमलधारी देव, भगवान पद्म प्रमलधारी देव नियम सार में कहते हैं कि वैराग्य के महल के शिखर के शिखामणि है, मुनिराज है वो वैराग्य के महल के शिखर के शिखामणि है। इतने बहुत वैराग है, कहीं भी वो रक्त नहीं होते, अनुरागी नहीं होते। ऐसे संत मुनिवर भी वैराग्य की बाहर भावना पा करके वस्तु स्वरूप का चिंतन करते हैं। विकल्प के काल में वस्तु स्वरूप का चिंतन चलता है तो उसमें बार भावना आदि इस प्रकार के चलते हैं। जो बार भावना में विषय आते हैं अलग अलग, ऐसे विचार विकल्प चलते हैं इनके लिए। देह का चिंतन नहीं चलता है और दूसरे कोई संयोग का भी चिंतन नहीं चलता है। जिसको संयोग में रहा हुआ देह की दरकार नहीं, इनकी उपेक्षा है, उनमें रस नहीं, देह के प्रति जिसको वैराग्य है, उनको दूसरे क्षेत्र में अलग से अलग संयोग वियोग हो गया, उसकी दरकार क्या क्यों करें? जो देह की नहीं दरकार करते हैं वो दूसरे संयोग की दरकार क्यों करेंगे? कोई कहने की बताने की आवश्यकता ही नहीं कि जो देह की दरकार जिसने छोड़ी हो दूसरी कोई दरकार करें, कोई सवाल पैदा नहीं होता। वंदे चक्री तथापि नमळे मान, जो चक्रवर्ती की सेना निकले वंदन करने को, आप सामने भी नहीं देखे, अपने ध्यान में मस्त रह जाए, पता चले तो भी कोई ध्यान देने का उसको कुछ आवश्यकता नहीं दिखती। ये राजा है, बड़ा पुण्यशाली है, लोक में उसका बड़ा पद है, जरा उनको मैं आशीर्वाद तो देऊं, उसको अच्छा लगेगा, चक्रवर्ती को अच्छा लगे ऐसा नहीं करे कि नहीं, कुछ नहीं। इंद्र आते हैं, चक्रवर्ती क्या इंद्र भी आवे ऊपर से आते हैं मुनिराज को वंदन करने के लिए। देवलोक में से देव आते हैं, इंद्र आते हैं, आ सकते हैं। रजकण के रिद्धि वैमानिक देव ने सर्वे माना पुद्गल एक स्वभाव, एक पुद्गल स्वभाव, मिट्टी और सोना में कोई फर्क नहीं, जीवित के मरणे नहीं न्यूनाधिकता, जीवन हो मरण हो कोई कमी वैसी हमें नहीं मालूम होती, देह साथ रहे देह साथ छोड़े हमें कोई उसका कोई नफा नुकसान लाभ नुकसान कोई दिखता ही नहीं, ऐसा भिन्न हो गया है। ऐसे वैराग्य के वैराग्य में वो झूलते हैं। वो तीर्थंकर भी दीक्षा के पहले जिसका चिंतन करते हैं तो तीर्थंकर द्रव होते हैं, वो भी दीक्षा पहले बार भावना का चिंतन करते हैं, वो कहते हैं वो भी दीक्षा के पहले जिसका चिंतन करते हैं। ऐसे वैराग्य रस रे रस, वैराग्य रस से रस बस्ती, वैराग्य भाव से जो सराबोर हैं, ऐसी ये बार भावना है। भाते किसी भवे को आनंद न हो, कैसे किस भवे जीव को आनंद नहीं आएगा, उसको आनंद आएगा। बार भावना सबको पसंद पड़ती है, वो तो अलग अलग विषय की अपेक्षा से बार भावना है, एक विषय से लेवे तो अपने स्वरूप की ही भावना है, आत्मस्वरूप की भावना प्रारंभ से लेकर के मुनि दशा तक चलती है, प्रारंभ से लेकर के मुनि दशा तक आत्मस्वरूप की भावना जो है वो चलती है, आती है। ऐसे वैराग्य रस से रस बस्ती, मैंने भीगी हुई वैराग्य रस से भीगी हुई ये बार भावना भाने के वक्त कौन से ऐसा भव्य है जिसको आनंद न हो, उसको आनंद आएगा ही आएगा। राग में दुख है, राग छोड़ने में वितरागता में तो सुख और आनंद है ही, तो किसको आनंद नहीं होगा। और कौन सा भव्य को मोक्ष मार्ग का उत्साह नहीं जागृत होगा, ऐसा कौन सा भव्य होगा कि जिसको मोक्ष मार्ग में और उत्साह बढ़े, उमंग बढ़े, ऐसा किसको नहीं होगा। मैंने भव्य मैंने रुचि वाला लेता है, जिसको रुचि होती है उसको अपने विषय में, रुचि वाले को अपने विषय में उत्साह आए बिना रहता नहीं। ये रुचि का तो चिन्ह है, लक्षण है। जिस विषय की रुचि होती है उस विषय में उत्साह आए बिना रहे नहीं। तो जिसको अपने शुद्धात्म स्वरूप की रुचि है, जिसको निर्दोषता की और पवित्रता की रुचि है, जिसको गुण की रुचि है, गुण से उत्पन्न होने वाले सुख की रुचि है, विषय कषाय से उत्पन्न होने वाले सुख की रुचि जिसको नहीं है और गुण से उत्पन्न होने वाले सुख की रुचि है, उनको तो मोक्ष मार्ग में उत्साह आएगा ही आएगा। ये तो मुनिराज की स्थिति बताई, तो मुनि दशा में तो ये कहा भगवान कुंद आचार्य ने अष्टपाहुड़ में कि वैसे तो आत्मा अरूपी तत्व होने से इनके सब परिणाम भी अरूपी होते हैं, रूपी पदार्थ के परिणाम रूपी होते हैं जो इंद्रिय ज्ञान से ज्ञान गोचर होते हैं, लेकिन अरूपी आकाश काराणु धर्मास्थिकाय धर्मस्थिकाय जीव सब पांच अरूपी पदार्थ हैं, इसके परिणाम भी अरूपी होते हैं, जिसको रूप रस गंध वर्ण शब्द ऐसे पर्याय नहीं होती। फिर भी ये मोक्ष मार्ग है, ये आत्मा के अरूपी परिणाम होने के बावजूद भी अगर आपको मूर्तिमंत कोई मोक्ष मार्ग का दर्शन करना हो तो ये मुनिराज का दर्शन करो, ऐसा कहते हैं। क्या कहा कि ये मुनि दशा तो आत्मा के अरूपी परिणाम है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये आत्मा के रूपी परिणाम नहीं है, अरूपी परिणाम है, वो इंद्रिय ज्ञान से समझने देखने में नहीं आते। फिर भी एक मुनि दशा ऐसी दशा है अंतर बाह्य निर्ग्रंथ दशा होने से, और इनके आत्मा के गुण इतने प्रसिद्ध हुए हैं कि उनके अंग अंग में ये झलकती है, वितरागता प्रसिद्ध होती है। तो भगवान कुंद आचार्य ने ऐसा कहा कि अमूर्ति मोक्ष मार्ग को मूर्ति के रूप में देखना हो तो ये जैन मुनि है, इसमें आपको मूर्तिमंत मोक्ष मार्ग का दर्शन होगा, ऐसा दिखा। बहुत सुंदर प्रणाम किया है दर्शन बाहुल शुरू में ही बात किया। ऐसे मुनि को देखते हुए भव्य जीव को मोक्ष मार्ग में उत्साह जागृत होता है, अपनी भावना प्रबल होती है कि मेरी भी ऐसे वितराग शांति सुख की दशा कब हो, ऐसी भावना और उत्साह उसमें जागृत होता है। ऐसे यहाँ गुरुदेव ने मुनिराज के भक्ति की है और अपनी ऐसी भावना के लिए भाव व्यक्त किए हैं।
बार भावना आपसे सुनने का अलग अलग आया है।
मोक्ष माला चलती है ना, भावना बोध शुरू किया। द्वादशानुप्रेक्षा स्वरूप दर्शन, चाहे जैसे तुच्छ विषय में प्रवेश करते हुए भी उज्ज्वल आत्माओं का स्वतः वेग वैराग्य में जंप लाना, कूदना, ऐसा ही होता है। श्रीमद् रायचंद्र जी की 17 साल की उम्र में इस भावना बोध को लिखा हुआ है, छोटी सी किताब लिखी, मोक्ष माला और भावना बोध, छोटी दो किताब छोटी उम्र में लिखी है। तो कहते हैं, शुरू करते हैं कि चाहे जैसा तुच्छ विषय हो, उज्ज्वल आत्मा पवित्र आत्मा है, कोई भी विषय को स्पर्श करते हैं वो वैराग्य में चले जाते हैं। बाह्य दृष्टि से जब तक उज्ज्वल आत्मा संसार के मायिक प्रपंच में दर्शन देते हैं, वहां तक उस कथन की सिद्धता क्वचित दुर्लभ है। क्या कहते हैं कि सम्यक दृष्टि धर्मात्मा ग्रस्त अवस्था में होते हैं तो है तो उज्ज्वल पवित्र है, फिर भी संसार के मायिक प्रपंच में वो दिखते हैं। संसार के कार्य को क्या कहा, माइक प्रपंच में वो दर्शन देते हैं, वहां तक वो पवित्र है, उज्ज्वल है, ऐसा सिद्ध करना दुर्लभ होता है, कठिन पड़ता है। फिर भी सूक्ष्म दृष्टि से सुलभ है, वो भी सुख है। कैसा प्रारंभ किया है, ग्रंथ का प्रारंभ करते हैं 17 साल की उम्र में। एक छोटे से छोटे जंतु से लेकर के बड़े से बड़े एक मदोन्मत हाथी तक के सगले सब प्राणी, मानवी, देवदानवी, ये सब सबकी स्वाभाविक इच्छा सुख और आनंद प्राप्त करने की है, इसमें कोई शंका
नहीं है।
नहीं, सबको सुख चाहिए, इसलिए वे कहीं न कहीं उद्यम करते रहते हैं, उसमें लीन रहते हैं, संलग्न रहते हैं, किसी न किसी प्रकार के सुख के कारण, सुख प्राप्त करने के कारण किसी न किसी प्रकार के उद्यम में वो संलग्न रहते हैं। किंतु विवेक बुद्धि का उदय बिना विवेक सुख प्राप्त करने के लिए सुख ही मिले ऐसा विवेक, बिना विवेक वो भ्रम को प्राप्त होते हैं, इस उद्यम में वो भ्रम में प्राप्त होते हैं और अनेक प्रकार संसार में अनेक प्रकार के जो प्रसंग है उसमें सुख का आरोप करते हैं कि हमको यहाँ से सुख मिलता है, कोई बोलता है कि हमको ऐसे सुख मिलता है, कोई बोलता है कि हमको ऐसे सुख मिलता है। अति अवलोकन से ऐसा सिद्ध है कि वे सभी आरोप वृथा है। बहुत विचार करने से ये बात सिद्ध हुई है, क्योंकि कोई कहते हैं कि हमको नहाने में सुख है, हम तो समुद्र के किनारे सारे दिन पड़े रहेंगे नहाएंगे, कोई कहते हैं कि हमको नहाने में दुख है, पानी में जाते ही हमको तो सर्दी जुकाम लगता है, कफ हो जाता है, ब्रोंकाइटिस हो जाता है। कोई किसी कहाँ आरोप करते हैं सुख के लिए, कोई कहाँ आरोप करते हैं। बहुत विचार करने से ये पता चलता है कि सुख का साधन होता तो हरेक के लिए होता, लेकिन ऐसा ये आरोप प्रथा है। इस आरोप को अनारोप करने वाले विरल मानवी विवेक के प्रकाश से अद्भुत भी अन्य विषय प्राप्त करता कहते आए हैं कि ये सुख सभी सुख भय से घिरा हुआ है, जैसे पैसा मिलता है तो उसमें भी भय है, तंदुरुस्ती मिलती है तो रोग का भय है, रूप मिलता है तो दूसरे से ईर्ष्या होने का भय है, मान मिलता है तो दूसरे की ईर्ष्या होती इसे भय है, पैसा लूटा जाना चुरा जाना डकैती होना कुछ भी होना सब में भय है, सब भय से ग्रसित हैं। और जहां भय होता है वहां दुख होता ही है। ये सब सुख भय के साथ है, लेकिन इसलिए सुख नहीं है किंतु दुख ही है। जो वस्तु प्राप्त करने में महाताप है, ताप है मैंने जो त्रास होता है, जो वस्तु भोगने में इससे विशेष त्रास होता है, और जो जिसके फल स्वरूप महाताप अनंत शोक और अनंत भय है, इस वस्तु को जो सुख है तो वो नाम मात्र सुख है, वास्तव में वो सुख नहीं है। ऐसे होने से विवेकी जीव ऐसे पदार्थों में अनुरक्तता नहीं करते। संसार के प्रत्येक सुख बड़े विराजित जो राजेश्वर हैं, वो भी तत्वज्ञान की प्रसादी प्राप्त होने से, थोड़ा बहुत यथार्थ तत्वज्ञान मिलने से, वो राजादि का त्याग करके परमानंद प्राप्त करने के लिए मुनि दशा को अंगीकार करते हैं, ये बात उन्होंने मान ली। यहां से लेकर के फिर वो बार भावना पर आ रहे हैं। सारांश ये है कि मुक्ति मैंने संसार के दुख से मुक्त होना, और जिसके फल स्वरूप सम्यक दर्शन ज्ञान परमानंद आदि अनुपम दशा की प्राप्ति करना, जिसमें परम सुख और परमानंद का अखंड निवास है, जिसमें जन्म मरण की विटंबनाओं का अभाव है, और शोक और दुख का जिसमें क्षय हो गया है, ऐसे विज्ञानी विषयों का विवेचन, ऐसे ऐसे विज्ञानमय साइंस जिसको कह लें, ऐसे विषय का विवेचन हम आगे करेंगे। वो ग्रंथ लिखते हैं इस विषय का विवेचन हम आगे करेंगे, परंतु बिना किसी विवाद ऐसा मान्य रखना चाहिए कि अनंत शोक और अनंत दुख की निवृत्ति कोई संसार के विषय से होती नहीं। संसार में कोई ऐसी चीज नहीं कि जिससे ये अनंत शोक और दुख की और भय की निवृत्ति होवे, ऐसी संसार में कोई चीज नहीं, इसमें कोई विवाद का विषय है नहीं। रुधिर से लोह का दाग नहीं जाता, लोह का दाग पड़ता है वो लोह से नहीं धोया जाता, लेकिन जल से उसका अभाव होता है। वैसे श्रृंगार से व श्रृंगार मिश्रित धर्म से संसार की निवृत्ति नहीं होती। जिस श्रृंगारिक वृत्ति से संसार की प्रवृत्ति होती है, उसी श्रृंगारिक वृत्ति से धर्म और धर्म की प्रवृत्ति नहीं होती। इसलिए ही वैराग्य जल की आवश्यकता निसंशय रूप से सिद्ध होती है। और यही इसलिए ही वीतराग के वचन में अनुरक्त होना उचित है। इसलिए वीतराग सर्वज्ञ जिनेन्द्र परमात्मा के वचन में अनुरक्त होना, मैंने विशेष अनुरक्त होना उचित है। और इसका फल ये है, निदान ये है कि इससे विषय रूप विष का जहर का जन्म नहीं होता, और परिणाम उसका मुक्ति ही है। इस वितराग सर्वज्ञ के वचन को विवेक बुद्धि से श्रवण करें, मनन करें, निधिध्यासन करें, और ऐसा करके हो हे मानवी अपनी आत्मा को उज्जवल कर, अपने आत्मा को पवित्र कर। कैसे शैली अपनाई है? 17 साल की उम्र में इनकी ये शैली है। करोड़ों में ऐसा मनुष्य उत्पन्न होता है कि बचपन में जिसकी प्रज्ञा विशेष इतनी हो कि जो सारे संसार को उपदेश देने में काबिल हो, ऐसा। अभी वैराग्य बोधिनी कितनी की भावना है, जो बार भावना है, वो कहते हैं वैराग्य और आत्महितैषी विषयों की सुदृढ़ता होने के लिए बार भावनाओं को तत्वज्ञानी हमेशा कहते हैं, बताते हैं, दर्शाते हैं। पहली है अनित्य भावना। शरीर, वैभव, लक्ष्मी, कुटुंब, परिवार आदि सर्व विनाशिक हैं। जीव का मूल धर्म अविनाशीपना है, जीव शाश्वत है, उसका कभी नाश होता नहीं। ऐसा चिंतन करना वो अनित्य भावना है। क्या कहा? अनित्य में अकेले अनित्य संयोग की चर्चा नहीं की, नित्य ऐसा अपने स्वरूप की मुख्यता करके उसकी अनित्यता कही। जैसे सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती होता है तो उनको ये दिखता है कि ये तो 4 दिन की भी चांदनी नहीं है, अनंत काल में शाश्वत हूँ, अनादि अनंत रहने वाला पदार्थ हूँ, इसमें ये मनुष्य भव का जो भी आयु है वो आयुष्य तो 4 दिन की चांदनी भी नहीं है। तो उनको अपनी नित्यता पूर्वक उस अनित्यता का परिज्ञान होता है, इसलिए उसमें उसको रस ज्यादा नहीं आता। और मात्र संयोग को ही, देह को ही पूरा जीवन मान लें, उतना ही जीव को समझे, वो तो झोंपड़ी में या गुदड़ी में भी इतना चौंट जाएगा, फटी हुई गुदड़ी होगी तो भी उसमें इतना चौंट जाएगा कि सारी दुनिया उसमें वहां दिखेगी। और चक्रवर्ती को अनित्य इतना दिखता है कि इसमें क्या रस है। जहाँ निवासी थोड़ा काल करना है, धर्मशाला में ठहरते ना, कि आज सुबह आया शाम को तो निकल जाना है, फिर ठहरने के लिए थोड़ा सफाई कर ले, लेकिन रंग रोगान ऑयल पे को वो क्या करना बैठेगा, शाम को तो निकल जाना है, उसमें उसको रस आता
नहीं।
चाहे धर्मशाला कितनी भी अच्छी हो लेकिन जहाँ ठहरना नहीं है उसमें रस कैसे आएगा। साथ ही अशरण भावना ली कि संसार में मरण समय जीव को शरण देने वाला कोई नहीं, न पैसा शरण देता है, न परिवार शरण देता है, न इज्जत आबरू कीर्ति कोई शरण देती है, न कोई शस्त्र अस्त्र मंत्र तंत्र कोई शरण
नहीं देता
है। अरे ऊपर से कोई देव आके भी शरण
नहीं देता।
इंद्र, नरेंद्र, जिनेंद्र कोई शरण बुद्ध होते
नहीं।
जिनेंद्र भी आकर के उनको मरण आयुष को पूर्ति करे, ऐसा कोई बनता है क्या?
नहीं बनता।
वो तो अपनी भी आयु खत्म होती है तो चले जाते। भगवान ऋषभदेव की आयु 84 करोड़ पूर्व की थी और भगवान महावीर स्वामी के 72 साल के, कितना फर्क। वो अपनी आयु भी नहीं बढ़ाते, दूसरे की बढ़ाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। संसार में मरण समय जीव को शरण रखने वाले कोई भी, मात्र एक पवित्र धर्म ही इसका शरण है, सत्य शरण है, जिसके आधार से वो मरण के दुख को अनुभव नहीं करता। मरण तो होता ही नहीं, लेकिन मरण होवे ऐसे मरण तुल्य दुख का अनुभव जीव करता है, जो सही समझ में ऐसा अनुभव नहीं होता। इसका चिंतन करना ये दूसरी अशरण भावना है। तीसरी कि इस आत्मा को संसार समुद्र में पर्यटन करते हुए, परिभ्रमण करते हुए सभी प्रकार के भाव प्राप्त किए, कोई भाव बाकी नहीं है। एक अपेक्षा उतनी लेती है, जो सम्यक दृष्टि को जो पद मिलता है वो नहीं मिलता है। जैसे कि सर्वार सिद्धि में जाते हैं वो बाकी मिथ्या दृष्टि को जितना भी देवलोक नवमी ग्रह पर्यंत का मिलता है वो सब तो मिल चुका। ऐसे संसार की जंजीर से मैं कब छूटूंगा, ये संसार मुझे न हो मैं मोक्षमयी हूँ ऐसा चिंतन करना वो तीसरे संसार से छूटने के लिए संसार भावना है। संसार भाने के लिए संसार भावना नहीं है, छूटने के लिए संसार भावना है, एकत्व भावना। यह मेरा आत्मा अकेला है, मैं अकेला आया, मैं अकेला जाऊंगा और मैं जो भी कर्म किया है अकेला ही उसका फल भोगूंगा, ऐसा अंतकरण से चिंतन करना ये चौथी एकत्व की एकत्व भावना है। वो जीव अकेला पैदा होता है, मरता है तो अकेला, मोक्ष में जाता है तो अकेला, धर्म प्राप्त करता है तो अकेला, और पुण्य पाप करके उसका फल भोगता है तो अकेला ही भोगता है, ये वास्तविकता है। ऐसी भाव चिंतन करना वो एकत्व भावना है। अन्यत्व भावना, इस संसार में कोई किसी का नहीं है ऐसा चिंतन करना वो पंचमी अन्यत्व भावना है। कोई किसी का नहीं है, परिवार तो परिवार भी कहने की चीज है, वास्तव में कोई किसी का होता नहीं है, क्योंकि हरेक आत्मा है वो स्वतंत्र पदार्थ है। कोई आत्मा से कोई अन्य आत्मा पैदा नहीं होता,
नहीं होता।
इसलिए कोई आत्मा किसी का पितृ पुता हो, जनक जननी हो, ये बात कहने मात्र है, वास्तव में ऐसा होता
नहीं
है। फिर भी वो उसको देख ये निकल पाता है कि संसार में कोई किसी का नहीं, मेरा भी कोई नहीं है, वो अपने मुनि दशा में तो टिकते के नहीं
टिकते हैं
तो अविचल रहते हैं, विचलित नहीं होती है, ऐसी भावना से। वरना तो जंगल में जाए और घर को याद करें ये हो जाएगा। वैराग्य नहीं हुए तो जो भोग उपभोग भूतकाल में भोगे हैं उनकी स्मृति आ जाएगी। जोर से तो ये किया कि हमको आगे भोग उपभोग में नहीं जाना है, लेकिन जो पूर्व में भोगे हुए उसकी स्मृति आ जाएगी। संसार में कोई किसी के नहीं है ऐसा उनको भी निकल पाता है। ये शरीर अपवित्र है, अशुचि भावना,
अशुचि।
ये शरीर अपवित्र मलिन है, मलमूत्र की खानी है, रोग और वृद्धावस्था का निवास धाम है। ऐसे शरीर से मैं भिन्न हूँ, पवित्र मैं शुद्ध आत्मा हूँ ऐसा चिंतन करना वो छठवी अशुचि भावना, आश्रव भावना। राग द्वेष अज्ञान मिथ्यात्व इत्यादि के सर्व आश्रव है और ये आश्रव दुखदायक है, ऐसे बंध का कारण है, जीव को बंधन में डालता है। ऐसे चिंतन करना वो सातवीं आश्रव भावना है। संवर भावना, ज्ञान ध्यान में प्रवर्तमान, ज्ञान ध्यान में प्रवर्तमान होकर के जीव नए कर्म को नहीं बांधते। ज्ञान ध्यान में प्रवृत्ति होने से नए कर्म आने को रुक जाते हैं, उसको संवर कहते हैं। ऐसा संवर प्राप्त हो उसको संवर भावना कहते हैं, जिसका मूल उपाय वेद ज्ञान बताया। निर्जरा भावना, ज्ञान सहित क्रिया करना, सो निर्जरा का कारण है क्रिया मैंने संयम तप। ज्ञान समेत आत्मज्ञान सहित स्वसंवेदन पूर्वक स्वरूप में स्थिर रहने की क्रिया होवे और उपयोग स्वरूप में स्थिर हो जाने से बाह्य क्रिया कुछ नहीं होवे, मन वचन काया के, ऐसा अपने आत्मा को चिंतन में लेना, ऐसी भावना करना उसको निर्जरा भावना कहते हैं। लोक स्वरूप भावना, 14 राजलोक का स्वरूप चिंतन करना वो दसवीं लोक स्वरूप भावना है। मैंने तीन लोक हैं, ऊपर के देवलोक मनुष्य लोक, नीचे नरक आदि का विचार करना, ये लोक स्वरूप भावना है। ये तीनों लोक में कर्म के भोग्य स्थान है, जहाँ अपने अपने कर्म को भोगने के लिए ये जीव उत्पन्न होते हैं। बोधि दुर्लभ भावना, संसार में परिभ्रमण करने वाले आत्मा को सम्यक ज्ञान की प्रसादी प्राप्त होना दुर्लभ है। सम्यक ज्ञान की प्रसादी ऐसा समझ लिया, थोड़ा भी संसार में परिभ्रमण करते आत्मा को सम्यक ज्ञान की प्रसादी प्राप्त होना दुर्लभ है, या सम्यक ज्ञान प्राप्त होना दुर्लभ है, तो फिर चारित्र सर्वविरति परिणाम रूप धर्म पाना तो इससे बहुत दुर्लभ है, ऐसा चिंतन होना। ये ग्यारहवीं बोधि दुर्लभ भावना है। धर्म बहुत दुर्लभ है, लाखों करोड़ों में किसी को ही प्राप्त होता है, विरल जीव को प्राप्त होता है, इसलिए उसको बोधि दुर्लभ कहा है। वो संख्या की अपेक्षा से रुचि वाले को तो आत्मस्वरूप की और आत्महित की जिसको रुचि हो, गुण की रुचि हो, पवित्रता की रुचि हो, उसको धर्म प्राप्त करना, धर्म प्राप्त होना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्राप्त होना, ये कोई दुर्लभ है नहीं, उसके लिए सुलभ है। ये बात भी आती है कि इसके लिए दुर्लभ है, संख्या की अपेक्षा बहुत कम लोगों को ये प्राप्त होता है, इसलिए दुर्लभ बताया। धर्म का उपदेशक धर्म दुर्लभ भावना है। बाहर में धर्म दुर्लभ भावना, बुद्धि दुर्लभ, ये धर्म दुर्लभ ऐसा कहा। धर्म के उपदेशक और शुद्ध शास्त्र का बोधक ऐसे गुरु और उनका श्रवण मिलना, ये दुर्लभ है, ऐसा चिंतन करना, ऐसा विचार करना, ये बाद में धर्म दुर्लभ भावना है। ऐसे मुक्ति साध्य करने, मुक्ति को साध्य करने के लिए जो वैराग्य की आवश्यकता है, उस वैराग्य को दृढ़ करने वाली बार भावनाओं में से कितनी भावनाओं का दर्शन अंतर्गत वर्णन करेंगे, फिर एक एक का कथा लिया है, कितनी भावनाओं कितने विषय में बांटी है, कितनी भावनाओं में अन्य प्रसंग अगत्य है, इसलिए इनका यहाँ विस्तार नहीं किया है। ऐसा करके फिर एक एक भावना का चित्रण किया है कथानुयोग के रूप में।
आदि देव जी मंदिर प्रभाव क्या योग प्रभाव दे दान गुरुदेव।